السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین. آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ قاف شروع کر رہے ہیں. مکی سورت ہے، اور اس سورت کے ساتھ ہی ہم قرآن کریم کی منزلوں میں سے آخری منزل میں انٹر ہو رہے ہیں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں، قرآن کریم کی 7 منزلیں، اور یہ 7 منزلیں اس لیے بنائی گئیں تاکہ کوئی انسان قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے تو 7 دنوں میں اس کو مکمل کر لیں. تو یہاں سے مفصلات کا آغاز ہوتا ہے، اس حصے کو مفصلات کہتے ہیں، اور یہ سورہ قاف سے سورہ ناس تک حصہ ہے. اس حصے میں جو صورتیں ہیں، ایسی صورتیں ہیں جو مفصل ہیں، یعنی جن میں فصل ہے، بریک ہیں، یعنی شارٹ صورتیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کرایا کرتے تھے تو مفصلات میں سے پڑھتے تھے کوئی صورت، یہ یاد رکھیے گا. یعنی لمبی لمبی صورتیں شروع والی نہیں پڑھتے تھے، وہ تب پڑھتے تھے جب آپ اکیلے ہوتے تھے، لیکن جب آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو پھر مفصلات میں سے پڑھتے تھے. تو یہ صورت اس حوالے سے بے حد اہم صورت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو بہت اہم مواقع پہ پڑھا، وہ مواقع جن میں مسلمانوں کا بڑا اجتماع ہوتا ہے، جیسے کہ 1، جمعے کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ہی اس صورت کا دیا، یعنی سورہ قاف کا. 2، فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور ہم اس کے بارے میں ایک حدیث سے دیکھتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قطبہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ آپ صبح کی نماز کی پہلی رکعت میں قاف والقرآن المجید پڑھا کرتے تھے. اسی طرح عیدین کی نمازوں میں، دونوں عیدوں کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھا کرتے تھے. یہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ سورہ قاف اور اقترابت الساعہ، جو سورت القمر ہے، آگے جا کے آتی ہے، تو وہ پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ عید پہ بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے، اس میں بھی پڑھتے تھے، اور جمعے کے خطبے میں بھی ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایسی سورت ہے جو بڑی اہم سورت ہے، اور اس کے بارے میں ام حشام بنت حارثہ بیان کرتی ہیں کہ ہمارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سال تک یا 1 سال تک، کچھ مہینے تک، ایک ہی تنور رہا، یعنی جس میں روٹیاں لگاتے ہیں. تو میں نے سورہ قاف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن سن کے یاد کر لیا، اس لیے کہ ہر جمعے کے دن جب آپ لوگوں کو خطبہ سنانے کے لیے ممبر پر آتے تو اس سورت کی تلاوت کرتے. تو دیکھیں، اب جمعے پہ بھی بڑا اجتماع ہوتا ہے، تو آپ اس سورت کی ابتدا کرتے تھے، اس کے ساتھ خطبہ دیا کرتے تھے. تو انہوں نے اتنی دفعہ یہ سورت سنی کہ ان کو یاد ہو گئی. تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سورت کو یاد کرنے کی کوشش کریں. اس سورت میں مین جو مرکزی مضمون ہے، یا اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کے جو تھیم ہے سورت کا، جس کے گرد یہ سورہ گھومتی ہے، وہ عقیدہ آخرت ہے. لہٰذا اس سورت میں آپ دیکھیں گے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا، حساب کتاب کا، جنت جہنم کا، ثواب عذاب، ان چیزوں کا ذکر بہت ہے. اور جو لوگ اس کو جھٹلاتے تھے تو ان کو بھی دلائل کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ مان جاؤ ان دلائل کو دیکھ کے جو تمہارے سامنے ہیں. تو مختصر سورہ ہے لیکن غافلین کو جگانے والی صورت ہے، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا حق پہچانتے نہیں ہیں، وہ غافل ہوتے ہیں نا، تو ان کو جگانے والی یہ صورت ہے. حروف مقطعات سے شروع ہونے والی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک حرف قاف کے ساتھ شروع ہونے والی صورت، نون کے ساتھ بھی صورت شروع ہوئی ہے. تو ایسی صورتیں ایک ایک حرف جو بے مشتمل ہے، جو حروف مقطعات میں سے ہی ہیں. اس صورت کا ترتیب نزول کا نمبر 34 ہے، مصحف کے لحاظ سے تو آپ دیکھ لیں 50 نمبر کی صورت ہے. تو دیکھتے ہیں آج ہم اس صورت کی پہلا جو حصہ ہے اس صورت کا، 45 آیات ہے صرف، تو آج ہم 19 تک پڑھیں گے انشاءاللہ. شروع کرتے ہیں سورت القاف، مکی سورت، 3 رکوعات میں مشتمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھیم اس کا عقیدہ آخرت ہے، اور اس میں عقیدہ آخرت کے اوپر بہت سارے دلائل دیے گئے ہیں، کائنات سے بھی، پچھلی قوموں سے بھی عقلی دلائل ایسے دیے گئے ہیں کہ انسان واقعی مان جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شروع فرمایا ایک حرف سے، قاف، اور ہم دیکھتے ہیں دوسری سورتوں میں کہ حروف مقطعات اٹسیلف ایک آیت ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک پوری آیت نہیں ہے، بلکہ قاف والقرآن المجید یہ پوری ایک آیت ہے. ٹھیک ہے، قاف، قاف کا معنی کیا ہے؟ جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کے قطعی معنی تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف سے جو بھی مراد لیا ہے وہ حق ہے. بس یہ ہمارا اس کے اندر کہنا ہونا چاہیے. جب کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی پھر ان کا مطلب کیا ہے، بھائی کیا یہ فالتو ہیں، یہ ایکسٹرا ہیں؟ نہیں، ایکسٹرا کوئی چیز نہیں ہے قرآن میں، لیکن یہ پھر کس لیے ہیں؟ پھر ان کو کیا مطلب ہے؟ پھر ہمارے سے کیا مطلب؟ ان کا معنی ہمیں نہیں بتایا گیا تو ہم نہیں جانتے. جیسے بہت ساری چیزوں کو ہم اس کی عقلی توجیہ نہیں کر سکتے، یعنی ریزننگ عقل سے نہیں کر سکتے، لیکن ہم ان پہ عمل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو پانی نہیں ملتا تو آپ تیمم کرتے ہیں، تو وضو کرنے سے تو آپ اعضاء کو دھوتے ہیں، تیمم کرنے سے تو آپ مٹی اوپر مل رہے ہیں، مطلب جھاڑ کے، مطلب ہاتھ مٹی والے ہاتھ اپنے اوپر مل رہے ہیں. تو اس کا پھر کیا ہوا، اس سے کیا ہو؟ مطلب یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. تو ہم بہت ساری چیزیں ایسی کرتے ہیں. آپ مسح کرتے ہیں تو آپ پیر کے اوپر کرتے ہیں، حالانکہ اگر عقلی طور پہ دیکھا جائے تو پھر تو نیچے کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو گندگی وہ تو پاؤں کے نیچے لگی ہوگی نا، ساکس کے اوپر تو نہیں ہوگی، نیچے ہوگی. تو آپ نے ساکس پہنے ہوتے ہیں لیکن آپ اوپر مسح کر رہے ہوتے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی لیکن ہم ان پہ عمل کرتے ہیں. اسی طرح حروف مقطعات کے معنی فائنل تو کسی کو بھی نہیں پتا. ہاں مفسرین نے جو بھی رائے دی ہیں وہ ان کی رائے ہو سکتی ہے، مگر ان کو بھی ہم کو ڈیفینیٹ میننگ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ ان کو بھی نہیں پتا، ان کو دے آر جسٹ گیسنگ. ٹھیک ہے، تو ہمارا اس پہ ایمان ہے ان حروف کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان سے مراد لیا ہے وہ حق ہے، وہ صحیح ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن اس کے علاوہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ چیلنج کے لیے بھی ہیں یہ،
हरूफ के आप ऐसा कुरान कोई बना के ले आओ जिसको के आप देख रहे हो अपने सामने। ये चैलेंज है अरब को कि जो अपने आप को बहुत अहले जुबान समझते थे, तो आप भी इस जैसा एक कुरान बना के लेकर आ जाओ। और इसी तरह मुतवज्जे करने के लिए भी है कि एकदम एक बात कही जाती है और उसे मुतवज्जे किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ मुफस्सिरीन ने इसके कोई माने लिखने की कोशिश की है, लेकिन कोई हतमी किसी की भी बात ऐसी नहीं है। यहाँ पे भी काफ से मुराद किसी ने कुछ अल्लाह ताला का नाम लिया है, किसी ने कहा कि कुरान इससे मुराद है, लेकिन हम इसका माना अल्लाह ताला के लिए ही छोड़ देते हैं। वल कुरान अल मजीद, कुरआने मजीद की कसम है, कसम खाई गई किसकी, कुरान की, और वो कुरान की सिफत क्या लाई गई जो अल मजीद है, मजद वाला। एक तो पहले हमें पता चला कि कुरान का लफ्ज, कुरान करीम में इस किताब का नाम, इस कलाम का नाम कुरान अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। और जो हम कहते हैं कुरान मजीद, तो हमने मजीद खुद से नहीं लिखा या खुद से इसको कहना नहीं शुरू कर दिया, बल्कि ये भी इस सूरत के अंदर हम पढ़ते हैं कि कुरान और साथ मजीद, ये इसकी सिफत है। ये कैसा कुरान है, मजीद है, मजीद मजद से। मजद क्या है, वुसत, करम, इज्जत, बुलंदी वाला और नफामंद होने का इसके अंदर माना पाया जाता है। और यानी कुरान करीम बड़ी वुसत है इसके अंदर, बड़ी फराखी है इसके अंदर, बड़ी इज्जत वाला कलाम है, बड़ा नफामंद कलाम है, बड़ी इसके अंदर खैर है। और मजद का माना करीम भी है, इसीलिए हम कहते हैं ना कुरान करीम, तो करीम भी है इसका माना, मजद का माना। तो बहुत ज्यादा यानी इज्जत वाला, बहुत कद्रो मंजिलत वाला, अल्लाह ताला के हाँ और इंसानों के भी दिलों में इसकी बहुत कद्रो मंजिलत है, बड़ी शान वाली किताब है। और कैसे, किस लिहाज से, मजामीन के लिहाज से भी, इसके अंदर जो माने हैं उस लिहाज से भी, और इसके जो बलागत फसाहत है उस लिहाज से भी, और हिकमत के लिहाज से भी, ये वो कलाम है जिसके अंदर शिफा भी है, जिसमें रहमत भी है, जिसमें बशारत भी है। और जो शख्स इल्म हासिल करना चाहता है उसको चाहिए कुरान करीम में गौर व फिक्र करे, इसलिए कि यह बड़ी बाबरकत किताब है। इससे उसको रहमतें भी मिलेंगी, शिफा भी मिलेगी, उसके इसके बड़े ही फायदे हैं जो उसको हासिल होंगे। तो बरकत से भरा पड़ा ये कलाम और हिदायत इसके अंदर है। कोई और कलाम मजीद नहीं हो सकता, मजद वाला नहीं हो सकता, याद रखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक अल्लाह ताला इसी किताब के जरिए बहुत से लोगों को ऊंचा करता है और बहुत सो को नीचा गिराता है। तो यानी क्या मतलब, इस किताब के जरिए जो हिदायत लेगा अल्लाह ताला उसको बुलंद कर देगा, और जो इसको छोड़ेगा अल्लाह ताला इसको नीचे गिरा देगा। आप देखिए ना, इसी किताब को आप जब थामते हैं तो पहले आप वो ही होते हैं, लेकिन जब आप इस किताब को सीखने लगे, समझने लगे, तो आप देखेंगे कि लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं, लोग आपसे कोई मसला पूछने लगते हैं, लोग आपके को बड़ी एहतराम की निगाह से देखने लगते हैं कि ये वो है जो कुरान करीम का इल्म रखने वाले हैं। उलामा की लोग क्यों इज्जत करते हैं, ये नहीं होता कि वो भी एक इंसान ही है, ऐसा नहीं कि वो दूसरे इंसानों से ऊपर कोई इंसान है, लेकिन वो जब इस किताब का इल्म रखते हैं तो वो, जब आप उनकी इज्जत करते हैं तो असल में उनकी इज्जत नहीं हो रही होती, वो उस कलाम की आप इज्जत करते हैं जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसको वो सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जो तालीम देते हैं, आप उस कलाम की इज्जत कर रहे होते हैं। तो एक कुरान का इल्म रखने वाला और ना इल्म रखने वाला बराबर नहीं होते। लिहाजा लोग जो इज्जत उसको देते हैं वो उस अल्लाह ताला के कलाम को इज्जत दे रहे होते हैं। इसीलिए उलामा की इज्जत, अहलुल कुरान की इज्जत, मैंने आपको बताया था, ये हदीस बताई थी कि अल्लाह ताला का इकराम करना है, उनका इकराम करना, उनको इज्जत देना, अल्लाह ताला को इज्जत देना है। समझाइए, ये जो हदीस मैं आपको बता चुकी हूँ कि सफेद बालों वाले के भी और अहलुल कुरान को भी इज्जत देना इस तरह से है। तो कि इसको हदीस में ये कहा गया कि ये अल्लाह ताला का इकराम करना है, तो जो इससे जुड़ जाता है उसकी भी इज्जत हो जाती, क्योंकि ये इज्जत वाला कलाम है, ये इज्जत देने वाला भी कलाम है, ये अपने साथ जुड़ने वालों की इज्जत बढ़ा देता है, उनकी कदरों मंजिलत बढ़ जाती है, क्योंकि ये कदरों मंजिलत वाला है, वो नफा बख्श बन जाती हैं जो इस कलाम से जुड़ते हैं, क्योंकि ये नफा देने वाला कलाम है, वो खैर और भलाई वाले लोग बन जाते हैं, क्योंकि ये खैर और भलाई वाला कलाम है। तो जो इसके साथ जुड़ता है उसको कितनी खैर मिलती है, कितनी सारी भलाई मिलती है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मखलूक नहीं है। देखिए, बाकी सब अल्लाह ताला की मखलूक है, जितनी भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये कुरान ये अल्लाह ताला की मखलूक नहीं है, क्योंकि कलाम जो होता है वो किसी की क्रिएशन नहीं होता, ये उसका हिस्सा होता है। इसी वजह से हम अल्लाह ताला की जहाँ कसम खा सकते हैं, वहां पे कुरान करीम की भी कसम खा सकते हैं, कुरान मजीद की भी, क्योंकि ये ऐसे ही है कि अल्लाह ताला की कसम खाना, क्योंकि ये उसका कलाम है। हाँ, बाकी हम किसी मखलूक की कसम नहीं खा सकते कि कोई बाप की कसम खाए, माँ की कसम खाए, अल्लाह ताला जिस चीज की चाहे कसम खाए, लेकिन हम किसी चीज की और की कसम खाते हैं तो हम एक शिर्क कर रहे होते हैं। हाँ, मगर हम अल्लाह ताला के कलाम की कसम इस वजह से खाते हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, ये उसकी मखलूक नहीं है, ठीक है, ये उससे निकली हुई बात है, ये उसकी कही भी बात है। तो लिहाजा ये कलाम बहुत कद्रो मंजिलत वाला है, इसीलिए इसको कहा गया हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, ये हर उस चीज से बेहतर है जिसको लोग जमा करते हैं, यानी जितनी चीजें लोग इस दुनिया में, पैसा सबसे ज्यादा जमा करते हैं, देखिए ना, माल जमा करते हैं, बैंक बैलेंस है लोगों के, उससे कहीं ज्यादा बेहतर ये चीज है। अगर किसी को अभी तक इस चीज के ऊपर शक है तो वो इसको देख ले कि ये मजद वाला है, ये खैर और भलाई वाला है, और इसके बारे में सिर्फ कुरान करीम में कहा गया है कि ये बेहतर है उससे जो लोग जमा करते हैं। माल को नहीं कहा गया कि ये हर चीज से ज्यादा बेहतर है जो लोग जमा करते हैं। कोई लोग कपड़े जमा करते हैं, कोई जेवर जमा करने का शौक होता है, कईयों को जूते जमा करने का शौक होता है, वो तरह तरह के जूते हर जगह से खरीद लेते हैं, कईयों को सोवेनियर जमा करने का शौक होता है, अपने अपने शौक है ना, लेकिन जिसको जिस चीज का भी शौक है, ये उससे ज्यादा बेहतर है जो लोग चीजें जमा करते हैं, ये उससे ज्यादा बड़ी खैर है जो अगर कोई समेट ले और इसको खैर समझे तो फिर है, वरना तो देखिए हर एक के घर में कुरान पढ़ा हुआ है, लेकिन कितनी इसकी तरफ तवज्जो है आप ये देख ले। और ये वो है जो इंसान के ईमान को बढ़ाता है, ये सूरह अनफाल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज्यादत हुम ईमाना, ये इसको उन लोगों का ईमान बढ़ा देता है मोमिनीन का, जो इस किताब की तरफ आता है इसका असर उसके दिल पे ऐसा होता है कि उसका ईमान बढ़ जाता है, और दिल अगर बीमार है तो उसका इलाज इसके अंदर है कि इसमें शिफा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो दिल जिसमें कुरान नहीं है वो वीरान घर की तरह, वीरान घर है, कितने ही घर हैं जो वीरान पड़े में, कितने ही सीनों में वो जो दिल है ना वो बीमार है और वीरान है, और इंसान को उसका एहसास भी नहीं होता कि मैं वीरान दिल लिए फिर रहा हूं। तो ये ऐसा कलाम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले सुफा के पास गए थे और फरमाया था, आपको पता है ना अहले सुफा तो बहुत गरीब थे, तो फरमाया था तुम में से कौन है जो बथान या अकीक ये वादियां है तो जाना चाहता है और वहां से दो सुर्ख ऊंट जो मोटे ताजे हो वो लेकर आए बगैर किसी गुनाह के, यानी कोई लूट मार के जरिए नहीं बल्कि लेकर आए उसको मिल जाए सब ने कहा हम सब चाहते हैं। फरमाया फिर कोई मस्जिद में जाके दो आयतें भी कुरान की सीख लेता है तो ये 2 सुर्ख ऊंटों से बेहतर है, और जो तीन सीख ले वो 3 से बेहतर। यानी हाँ, अब आप देखें कि जैसे समझ ले आज गाड़ियां हैं, आप ऊंट की मिसाल उस तरह से ले लेना, क्यों आप कहेंगे हमें ऊंटों से क्या मतलब। तो जैसे आप कहें कि कोई बहुत जबरदस्त गाड़ी लेटेस्ट जो बहुत महंगी होती, सुर्ख ऊंटों से बड़े महंगे तसव्वुर किए जाते थे, समझे जाते थे। तो आज के दौर में कोई बहुत ही कीमती गाड़ी, बहुत ही लेटेस्ट गाड़ी, लेटेस्ट मॉडल की जो अभी निकली हो, वो आपसे कहा जाए कि दो गाड़ियां तीन गाड़ियां आप वहां से ले आए, जिनको सवारियों का शौक होता है उनसे पूछें तो उनको कितना अच्छा लगता है कि हमारे पास ऐसी गाड़ियां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो आयतें भी सीख लेना ना, वो बेहतर है इनसे। दो आयतें, जिसने 3 सीख ली वो 3 गाड़ियों से बेहतर समझ लें आप, 4 सीख ली 4 से बेहतर। सुभान अल्लाह, यानी इतनी ज्यादा कद्रो मंजिलत है, जबकि हम माल के ऊपर तो कितनी तवज्जो देते हैं, इसको सीखने को कुछ समझते ही नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं समझते। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ लोग हैं जो अल्लाह ताला के अहल है, अहल अहल समझते ना फैमिली, जो अल्लाह ताला के अहल है जमीन में। ये अल्लाह ताला की तो कोई फैमिली नहीं, लेकिन ये शर्फ है उनका कि अल्लाह ताला उनको अपना अहल कहता है कि ये मेरे अहल है। तो सहाबा ने पूछा कि वो कौन लोग हैं या रसूलुल्लाह, यानी इससे पता चलता है वो स्पेशल लोग हैं, वो अल्लाह ताला के बहुत स्पेशल हैं, कोई VIPs हैं जो अल्लाह ताला के समझ लें ऐसे। वो VIPs कौन है, आप क्या समझते होंगे कि कौन होते हैं VIP, जो मिलियनेयर बिलियनेयर्स हैं, जो बहुत बड़े वजीर और सदर और ये हैं, वो अल्लाह ताला के स्पेशल लोग हैं। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अहलुल कुरान, अहले कुरान वो अहल है अल्लाह ताला के, वो खास और उसके खास बंदे। सुभान अल्लाह, क्या हम अल्लाह ताला के यहाँ VIPs नहीं बनना चाहते? तो इन बातों को लोगों को बताया करें, फैलाया करें। खैरकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेस्ट वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए, बेस्ट है। तो फिर बेस्ट नहीं बनना चाहते क्या? कई लोगों के बड़े बड़े लोग हैं, उनके हालात जिंदगी पढ़ती ना तो उसके अंदर यही लिखा होता है कि वो अपनी आखिरी उम्र के अंदर हसरत कर रहे थे कि हमने अपनी जिंदगी ये फिक सीखने या और उलूम के अंदर भी क्यों लगा दी, दीन के ही है वो भी, और कुरान को क्यों ना इतना वक्त दिया। एक ही वफात हुई तो उन किसी के ख्वाब में आए, इतनी उन्होंने किताबें लिखी हुई, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन जब ख्वाब में आए तो किसी ने पूछा कि आपके साथ क्या मामला हुआ, तो फरमाने लगे कि वो जो बच्चों को मैंने कुरान पढ़ाया था ना, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने मेरी बख्शिश कर दी। सुभान अल्लाह, यानी कुरान करीम का जो ये सीखना, इसके लिए बैठना, उसके लिए वक्त देना, ये ऐसे फालतू टाइम ना समझे, ये बेकार का मशगला ना समझे। काश कि हमें इसकी कद्रो मंजिलत पता चल जाए। हम चूम चूम के तो बहुत रखते, अदब तो बहुत करते, लेकिन असल इसका अदब और असल इसकी ताजीम, इसकी इज्जत ये है कि हम इसको अपना कीमती वक्त दे, कीमती चीज के लिए सबसे कीमती चीज निकाले, और वो है हमारा वक्त, जो इस वक्त किसी के पास भी नहीं है, जिसको सब बचा बचा के कहीं और लगाना चाहते, वो जहां पे भी आप लगाएंगे वो इससे बेहतर नहीं हो सकता। इस वक्त आप जाके कहीं कमाई भी कर सकते थे, कोई जॉब भी कर सकते थे, जहां से आपको 4 पैसे मिल जाते, लेकिन वो जो 4 पैसे मिलना है ना, वो खत्म हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे, आपकी जिंदगी खत्म हुई तो उसके साथ ही खत्म हो जाएगा, या फिर आप कहीं खर्च कर लेंगे तो खत्म हो गए, उनसे क्या कोई कपड़ा खरीद लेंगे, कोई चीज खरीद लेंगे, वो चीज खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका जो अजर है वो कभी खत्म नहीं होगा। इसको वैल्यू दे, इसको बड़ा समझें। इवन आप अगर कोई और चीज सीख लेंगे, कोई हुनर सीख रहे हैं, कोई किताब सीख रहे हैं, कोई और चीज सीख रहे हैं, तो वो इल्म भी हमारे साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इल्म नहीं खत्म हो सकता जो कि कब्र का भी साथी बने, हाशर में भी सिफारशी बने और जन्नत तक पहुंचा के आए। जो साथ साथ खड़ा हो जब हमें कब्र में डाल के लोग चले जाएं वापस, तो ये हमारा उसमें साथी बन जाए, हमें वहां पे कब्र की वहशत से मानूस करने वाला बन जाए कि मैं तुम्हारे साथ हूं, इस वक्त कोई तुम्हारे साथ नहीं, ये वो साथी बन जाएगा। इससे ज्यादा खुशनसीबी क्या हो सकती है कि किसी का साथी कुरान बन जाए जब उसका कोई साथी ना हो, ये तब भी नहीं छोड़ता, ये ऐसा बेस्ट फ्रेंड है इंसान का। लेकिन हम इसको छोड़ छोड़ के भागते हैं। आज तो ये किताबी शक्ल में नजर आ रहा है ना, कल जब ये एक इंसान की शक्ल में मौजूद होगा और कब्र में आ जाएगा हमारे पास, और वहां की वहशत से हमें मानूस करेगा, और हशर में होगा और खड़ा होके कहेगा मैं तुम्हारा साथी, जब सब दूर भाग रहे होंगे, जब कोई रिश्ता अपना नहीं रहेगा, तब ये वफादारी निभाएगा। हम इसी को छोड़ छोड़ के भागते और इसी के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं और चीजों को, या इसी को समझते हैं कि बस अच्छा कब खत्म हो, खत्म कब होगा जी, हमें खत्म करने की फिक्र है ना, कि हमें ये होना चाहिए कि अल्लाह इसको सीने से लगा के रखो, ये कभी भी खत्म ना हो, ये मेरी जिंदगी से कभी भी दूर ना हो, एक दफा हो गया, दूसरी दफा, तीसरी दफा, मेरी तो सारी जिंदगी इसी के अंदर खप जाए, तब भी मैं इसके सारे उलूम नहीं पा सकती। ये वो है इल्म जो अल्लाह ताला का इल्म है, उसकी इल्म की वसूतों तक कहाँ कोई पहुंच सकता है। ये वो समंदर है जिसके अंदर जो गोता लगाता है मोती चुनता है, जितना डीप जाएंगे उतने ही मोती चुनेंगे, फिर भी हम इस चीज में की फिक्र में रहते हैं कब खत्म होना है जी, कब हमें सर्टिफिकेट मिल जाए तो हम भी आजाद होके बैठ जाए, इसी से जान छुड़ाना रह गया। उसके बाद इस वक्त को किधर लगाओगे, किसी भी ऐसी जगह लगाओगे जो इससे बेहतर नहीं हो सकती, बताओ दुनिया में वो कौन सी चीज है जो इससे बेहतर है, जिसको कुरान ने कह दिया हुआ खैरु मिम्मा यजमाउन, मुझे बताएं एक चीज बता देना कोई भी जो इसका मुकाबला कर सके, जिसके हम पल्ला भी हो सके, चलो ऊपर ना से इसके बराबर भी हो सके, वो चीज बता दे मुझे सिर्फ, वो उस एक चीज का नाम लीजिए जो इसके बराबरी कर सके, वो कोई चीज नहीं इस दुनिया में, जिसको उस रब ने फरमा दी ये मजद वाला कुरान है, ये तो तुम्हें खैर ही खैर देने वाला है, इसके जरिए तो तुम नफा ही पाओगे, बरकतें ही पाओगे, रहमतें ही पाओगे, शिफा ही पाओगे। तो इस कदरों मंजिलत वाले कलाम को छोड़ के जो अपना वक्त कहीं और लगाए और सोचे कि मैं ज्यादा बेहतर सौदा कर रहा हूं, वो खसारे में है, वो नुकसान में है, कभी भी इससे बेहतर कोई और चीज नहीं हो सकती, और कहीं और वक्त लगाना इससे ज्यादा नफामंद नहीं हो सकता। जैसे अल्लाह ताला अपनी मखलूक के मुकाबले में, इसी तरह ये है कलाम, ये इल्म हर इल्म के मुकाबले में और हर कलाम के मुकाबले में, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मेरी बात नहीं है ये कि हम ऐसे ही मैं बातें कर रही हूं तो चलो आपको अहमियत बताने के लिए को बढ़ा चढ़ा के बात, इसमें जर्रा बराबर भी एग्जेजरेशन नहीं है, कोई मुबालगा नहीं है, ये सच्ची बात है, ये वो बातें हैं कि जो अल्लाह ताला ने इस कलाम में बता दिया हमें, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत बता दी कि ये कितनी अहमियत का हामिल है। तो इसको छोड़ने का कभी सोचे भी नहीं, इससे दूरी का कभी सोचे भी नहीं, इसको अपनी जान से करीब कर ले, इसको इस तरह समझ ले कि ये मेरी अब सांसों के साथ ही खत्म होगा, ये इसके पहले खत्म नहीं हो सकता, और अल्लाह ताला से दुआएं किया करें कि मुझे भी ये शर्फ दे दे, ऑनर दे दे, दिस इज एन ऑनर, कंसिडर इट एज एन ऑनर, ये मुझे अल्लाह ऑनर दे दे कि मेरा वक्त इसके साथ गुजरे, अल्लाह मुझे ये ऑनर दे दे कि मेरी आखिरी सांस तक ये मेरे साथ रहे। तो ये अल्लाह ताला के चुने हुए बंदे होते हैं जिनको अल्लाह ताला इस कलाम की सआदत देता है कि वो इसको सीख सके, समझ सके, ये चुने हुए बंदे हैं, ये आम हर एक को नहीं मिलती ये शहादत, तो अगर आपको मिल गई है तो इसको अपनी जान से लगा के रखे, इसको मुतबर्रिक समझें, इसकी कदर किया करें, इसको फालतू ना समझा करें, इसे जान ना छुड़ाया करें और इसे भागा ना करें, और जो वक्त इसके साथ गुजर जाए उस पे खुश हुआ करें कि ये मेरा वक्त मेरे कुरान के साथ ही गुजरा है ना, चलो टेस्ट की भी तैयारी करें, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, नंबरों को छोड़ें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वक्त तो कुरान के साथ गुजर गया इसके जरिए। चलो टेस्ट के जरिए गुजरा, मुझे ना पसंद होते हैं टेस्ट, लेकिन देखो इसकी वजह से मेरा वक्त इस कलाम के साथ गुजर रहा है, इसकी वजह से मैं इसको ज्यादा पढ़ पा रही हूँ, इसकी वजह से मैं इसके अंदर और गहराई में उतर रही हूँ और इसको अपने सीने में उतार रही हूँ, इसको याद कर रही हूँ। तो ये एक बड़ी अल्लाह ताला ने आपको एजाज की चीज दी भी है, इसका इकराम किया कीजिए, ये भी इसकी इज्जत है कि इसको अपने लिए बाए से शर्फ समझे, इसको अपने लिए ऑनर समझे। और अगर हम इसको बस ऐसे ही समझते हैं कि बस ओहो फिर क्लास आ गई, ओहो फिर ये पढ़ना पड़ गया, फिर दोबारा इसके लिए वक्त निकाल लूं, फिर खोल रहे हाय हाय टेस्ट और ये, तो इसका मतलब आप इसको इज्जत नहीं दे रहे, क्योंकि ये इस कलाम की इज्जत है ना। आप तो को तो खुश होना चाहिए, ये भी इसकी इज्जत है ना। हम ऊंचा रखना सिर्फ इज्जत नहीं है कि ऊंचा कर लिया तो हम खूबसूरत गिलाफों में डाल दिया तो ये इज्जत मैं कर रही हूं, ये क्या इज्जत है कि हम ये करें कि हम इसको अपने से दूर करने को समझें कि ये बड़ी अच्छी बात है कि मेरे से दूर हो जाए और चलो मैंने खत्म कर लिया, जान छूटी मेरी, कितने साल का कोर्स मैं कर रही थी कि शुक्र है ये साल खत्म हुई, इतना मैं तो इसी में बिजी हो गई। नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग इसमें बिजी हैं आज के दौर में, ये दौरे फितन है, इसमें जो लोग अपने आप को इसके साथ जोड़ लेंगे वो बच जाएंगे, और जो इससे दूर भागेंगे ना तो फिर हिदायत का पैगाम जिसने अपने से दूर कर दिया फिर वो किधर एंड अप होगा सोच ले। तो अल्लाह ताला ने इस कलामे पाक की कसम खाई है, और आप देखेंगे हरूफ मुकत्तआत के बाद अक्सर कुराने करीम का ही जिक्र आता है। तो कसम खा के अल्लाह ताला ने किस चीज पे कसम खाई? देखिए एक तो होता है ना हर्फ ए कसम, जैसे यहाँ पे वाव है, बा से भी कसम खाई जाती है, बिल्लाही तल्लाही, और एक चीज है जिसके जरिए कसम खाई जाती, जैसे यहाँ पे कुरान करीम है। अब किसी बात पे कसम खाई जाती, जैसे मैं कहूँ कि अल्लाह की कसम है, अल्लाह की कसम है, लेकिन आगे क्या, किसी जो चीज पे, क्या चीज के भाई मैं सच्ची हूं या मैं वहां जा रही हूं या कोई तो बात होगी ना, तो किस बात पे कसम खाई गई, वो यहाँ पे महजूफ है, इसका जिक्र नहीं है। इसका मतलब या तो वो अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है कि किस चीज की कसम खाई जा रही, और कुरान का ये लफ्ज कराआ से पढ़ना तिलावत करना, और करा जमा करना, ये भी ये इसका रूट हो सकता है। तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाने वाला कलाम, बहुत ज्यादा जिसकी तिलावत की जाती है। और बाज ने कहा है इसकी कसम इसलिए है कि कोई भी चीज कुरान से बेहतर नहीं है, इसलिए इसकी कसम है। बल आजीबू, बल्कि उन्होंने ताज्जुब किया, किस बात पे, अंजाअहुम मुनज़िरुन, कि आ गया उनके पास एक मुनज़िर, इंतजार करने वाला, मिनहुम उनमें से, फ़क़ाल काफिरुना हाज़ा शयुन अजीब, काफिरों ने कहा ये तो बड़ी अजीब बात है, यानी किस चीज पे उन्होंने ताज्जुब किया। ताज्जुब क्या होता है, यानी हैरत का इजहार करना, जैसे हम उर्दू में भी ताज्जुब कहते हैं, ये हमारे लिए कोई डिफरेंट वर्ड नहीं है, जिसे कहते हैं अमेज्ड हो गए, अमेजमेंट, कि किस बात पे उनको ताज्जुब हुआ, उनका ताज्जुब इस बात पे हुआ कि ये क्या बात हुई कि एक इंतजार करने वाला हम ही में से आ गया। इंतजार करने वाला, ये नजीर भी इसी से है, और मुंजिर भी नून दाल रॉ, क्या मतलब, मुंजिर वो होता है जो इंतजार करे, और इंतजार क्या होता है, यानी इसका हम तर्जमा डराने वाला तो लिख देते हैं, लेकिन असल इसकी डेप्थ में क्या है कि वार्निंग देने वाला, लोगों को खबरदार करने वाला, ये होता है इंतजार। और मैं आपका इसको पहले भी बता चुकी हूँ कि जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई वार्निंग देता है कि देखिए जी आगे आप जाएंगे ना वहां पर आग लगी हुई है, उस इस रास्ते पे ना जाए, तो आप कहते हैं बहुत शुक्रिया आपने मुझे बता दिया। ये बंदा है जिसने आपको खबरदार कर दिया, आपको खबरदार करते हैं ना ये कि भाई कल मौसम खराब होने वाला है, कल तूफान आने वाला है, अल्लाह ना करे कभी ऐसी कोई बात करते हैं, तो वो है जो आपको वार्निंग दे रहा है, वार्नर जिसको कहेंगे। तो ये होता है इंतजार करना। तो एक इंतजार करने वाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम ये नहीं कह सकते थे डराने वाले आ गए, क्योंकि ये लफ्ज हमें कोई ज्यादा अच्छा नहीं लगता कि कोई डराए हमें, ठीक है। तो मुंजिर को ने जो कि आपका हमदर्द होता है ना, वो अब वो हमें मौसम का भी क्यों बता देते हैं कि ऐसा ऐसा इतना सवेर कोई ऐसा तूफान ऐसी कोई मुश्किल आने वाली है, या इस रास्ते पे ना जाओ, ये आगे कोई डेंजर है, आगे कोई डाकू खड़े में है कुछ है। तो ये कौन होता है? ये आपका खैरख्वाह होता है। ये अगर एक डराने वाला होता है जो आपको मतलब मिसाल के तौर पे कोई आके आपको वैसे ही डराता है, एकदम ऐसी शक्ल बना लेता है आप डर जाते, वो वाला नहीं। ये वो है जो आपको किसी खतरे से खबरदार करता है, वार्न करता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनजिर थे, और नजीर और बशीर आपको बना के भेजा गया कि आप लोगों को वार्न कर दें। किस खतरे से वार्निंग देने के लिए आए हैं कि देखो लोगों, अगर ऐसी ऐसी जिंदगी गुजारोगे तो आगे आग है, जहन्नुम है, देखो लोगों शिर्क से बच जाओ, देखो लोगों गुनाहों से बच जाओ, अल्लाह की नाफरमानी से बच जाओ। ये बातें हैं जो अल्लाह की नाफरमानी की है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने वो तुम्हें वो सब चीजें बता दी हैं जो जन्नत की तरफ लेके जाने वाली, और वो सब चीजें भी बता दी हैं जो जहन्नुम की तरफ लेके जाने वाली। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशीर भी थे और नजीर भी थे, लेकिन पहला आपने काम क्या किया? इंतजार किया। जब आप सफा पहाड़ी पे खड़े हुए थे तो आपने यही फरमाया था कि अगर तुम इसी तरह शिर्क करते रहोगे तो फिर आगे आ गए, बच जाओ इससे, इस अंजाम से बच जाओ। तो ये इंतजार, तो उनको अजीब किस बात, क्या बात लगी अजीब? वो काफरों को क्या चीज लगी थी कि इसमें अजीब बात क्या थी? नहीं क्या, नहीं, वो कोई आके हमें कह रहा है कि मेरे पास अल्लाह ताला का पैगाम आया है कि शिर्क छोड़ दो, ये गुनाह है ये छोड़ दो। वो हमें वार्निंग दे रहा है, और वो मिनहुम उनमें से ही है। उनको ये बात अजीब लगी हमारे अंदर से। अब्दुल्लाह का बेटा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता, हमारे सामने ये बच्चा बड़ा हुआ है, अब ये कह रहा है अल्लाह ताला की तरफ से मेरे पास पैगाम आ गया। एक अल्लाह की तरफ दावत देना शुरू कर दी इसने, सारे इलाहों को कहा उनको छोड़ दो, एक इलाह को मानना शुरू कर दो। तो ये क्या बात हुई फिर? तो हमारे सामने पला बड़ा है, और फिर अगर किसी ने आके ये बात कहनी थी तो कोई फरिश्ता आता? ये क्या बात हुई? हमारे अंदर से एक बंदा खड़ा होकर ये कहना शुरू कर दिया उसने। देखिए इंसान को ना अपने जैसे इंसान जो खास तौर पे उन्हीं में से हो, मतलब आपकी कोई दोस्त है आज को वो दीन को समझने लगी और आपको तबलीग करने लगी, तो आपको बड़ा बुरा लगता है कि तुम बड़ी अपने आप को समझने शुरू हो गई हो, तुम मुझे अब बताओगी? नहीं, ये तो हमारी जैसी हमारी दोस्त है ना, ये क्यों बताए? कोई हक बात भी बता रहा हो तो वो बुरी लगना शुरू हो जाती है। हाँ, कोई बाहर से आके बताए तो फिर हम कहते हैं अच्छा चलो भाई उसकी तो बात हम सुन लेंगे, ना अपने दोस्त की अपने साथी की बात सुनना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, चाहे वो हक बात ही क्यों ना हो। तो उनको ये लग रहा था कि ये तो हमारे अंदर रहते और स्टेटस में हम सरदार हैं, और एक ये यतीम लड़का है तो ये आके हमें बताएंगे और हमारे सामने पले बड़े। हाँ, कोई बाहर से आते कोई दूर से आते, हालांकि इसके अंदर उनकी खैर होती है। अल्लाह ताला ने अंबिया को उनकी कौमों में ही भेजा, क्यों था? क्योंकि वो लोग उनकी जुबान जानते, उनके हालात जानते, उनकी तबीयतें जानते। एक ऐसा बंदा ज्यादा बेहतर बता सकता है। देखिए, आप डॉक्टर के पास किसके पास जाते हैं? जो आपकी जुबान बोलता है, जो आपके कल्चर को जानता है, जिसको पता है कि हमारे लिए कौन सी चीजें हैं जो बहुत मैटर करती हैं, आप उसके पास जाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने उनको अंबिया बना के भेजा जो उन्हीं लोगों में से थे, ताकि वो बेहतर तौर पे इनको बता सके। उनको पता है ना इनका इनर डाउट क्या है, बाहर से आता मिसाल के तौर पे पैगंबर तो अरब में से है, और कोई अंग्रेज आके उनको समझाने शुरू कर दे ना, उनकी जुबान समझ जाएगी, वो कहेंगे हम आपको हमारा कल्चर ही नहीं पता, हम लोग कैसे रहते हैं, हमारे लिए कौन सी चीजें हैं जो मैटर करती हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाता। तो ये तो उनके लिए एक अल्लाह ताला की रहमत थी, अल्लाह ताला ने इसको अपना एहसान करार दिया कि तुम ही में से रसूल भेजा अल्लाह ताला ने, वरना तो तुम उनकी बात समझ ही ना पाते, और कहते इसको क्या पता। तो इसको बजाय इसके कि एक अल्लाह ताला की तरफ से एहसान समझने के, वो इस पे ताज्जुब करने लगे और कहने लगे ये तो बड़ी अजीब बात है। और दूसरी उनके लिए क्या अजीब बात थी, दूसरी इनके लिए अजीब बात ये थी कि आइदा मितना व कुन्ना तुराबन, जब हम मर जाएं और हम मट्टी हो जाएं, जालिका रजुम बईद, तो ये जो आप कहते हैं कि दोबारा उठाए जाएंगे, दोबारा जिंदा कर लेंगे, ये लौटना तो बड़ी दूर की बात है। कैसी बातें करते हैं कि भाई हम उठेंगे, हमें हिसाब किताब होगा, तो ये तो हमारे लिए बड़ी अजीब बात है। तो यानी उनके लिए ये बड़ी अचंभे की बात थी, बड़ी अजीब बात थी। जब आप सोच रहे होंगे देखिए हम तो नहीं ना ये सारा कुछ कहते, हम क्यों पढ़ें ये सब, तो मैं आपको ये कहूंगी गौर से इन आयात को सुना करें, इसलिए कि ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि अल्लाह ताला माफ कर दे आपको, अब अपने इर्द गिर्द मुसलमानों में ही ऐसे लोग मिलना शुरू होंगे जो कि कयामत को झुठलाने वाले, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को ही झुठलाने वाले हैं और कहते अपने आप को मुसलमान, जो आपके बशर होने को झुठलाते हैं, यहाँ कयामत के दिन को झुठलाते हैं, कहते बस यही है, बस सारा कुछ यही है, यहाँ पे जिसको अच्छा मिल गया बस वही है, जहाँ पे जिसको सजा मिलनी है वो यहीं पे मिल जाती है, कयामत कयामत और इस तरह की बातें करके हमें ना डराओ इस तरह, और ना ही हमसे ये बातें करो। तो फिर आपको पता होना चाहिए ना इसके दलाइल, ये क्यों कयामत आनी जरूरी है, क्या है इसके दलाइल। तो वो लोग एतराज करते थे कि कैसे हम बास बादुल मौत को मान लें, वो कहते कि ये तो बड़ी दूर की बातें हैं, ये तो महाल है। तो अल्लाह ताला ने उनके इस ताज्जुब के ऊपर आगे दलाइल दिए हैं कि किस तरह से क्या चीज दलील बनती है अल्लाह ताला की, इल्म की, उसकी कुदरत की, उसकी अजमत की, आप उससे अल्लाह ताला को पहचानो और फिर सोचो कि क्या दोबारा जिंदा करना ऐसी जात के लिए मुश्किल होगा जिसने ये कर दिया और जिसका इल्म ऐसा है। असल में ऐसी बातें वो करते हैं जो अल्लाह ताला की हस्ती को नहीं पहचानते, जो उसकी कुदरतों को नहीं जानते, वो कितना पावरफुल है उसको नहीं समझते, उसकी अजमत उनके दिल में बैठी नहीं होती, इसीलिए तो उनको लगता है कि जैसे इंसान नहीं पैदा कर सकते दोबारा, आज तक इंसानों ने किसी इंसान को दोबारा जिंदगी नहीं दी और दोबारा नहीं खड़ा कर सके, और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली लेकिन आज तक यहां तक नहीं पहुंच सके, तो शायद अल्लाह ताला माफ करे कि नाउज़ु बिल्ला के अल्लाह ताला भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया कद अलिमना मा तनकुसुल अर्द मिनहु व इंदना किताबुन हफीज, तहकीक हम जानते हैं, यानी बेशक यकीनन, कद का मतलब यकीनन, ये अल्लाह ताला का जवाब है और कितना पावरफुल जवाब है, यकीनन हम जानते हैं। तुम कहते हो कैसे खड़ा किया जाएगा, हमें तो ये भी पता है जो कमी करती है जमीन इनमें से, क्या मतलब, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह ताला हमें माफ कर दे। जब इंसान मर जाता है तो उसके जिस्म के किस तरह हिस्से झड़ना शुरू हो जाते हैं, कैसे मट्टी उसके जिस्म को खाना शुरू हो जाती है, कैसे इंसान का वो जिस्म जो अभी सही सलामत था जब कब्र के हवाले किया जाता है, तो कैसे कब्र में उसके जिस्म को खाने के लिए कीड़े मकोड़े पहुंच जाते हैं। जिस्म से ऐसी गैसेस निकलती हैं जिससे जिस्म फूल जाता है, पेट से स्टार्ट होता है ये प्रोसेस, और इंसान की शक्लो सूरत ही बदल जाती है। कैसे एक गलने सड़ने का प्रोसेस शुरू होता है तो बाल, नाखून, तलवे, हथेलियां सब झड़ जाते हैं। इंसान के एक्सटर्नल और इंटरनल जितने ऑर्गन्स हैं, दिल, फेफड़े, सब चीजें एक एक करके कैसे जैसे डिसॉल्व हो जाता है ना इंसान, जैसे नमक पानी में डाल दे तो डिसॉल्व हो जाता है, इस तरह इंसान डिसॉल्व होने लगता है, खत्म होने लगता है। कैसे ये स्किन फट जाती है, इंसान में से बदबू आने लगती है, सर के अंदर जो सब कुछ है, ये दिमाग, ये सोचे, कैसे ये दिमाग रेशा रेशा होने लगता है, मसल्स अलग अलग होने लगता है, टूट फूट शुरू हो जाती है, और इंसान आहिस्ता आहिस्ता मट्टी बनने लगता है, हत्ता के गोश्त पोश सब कुछ खत्म हो जाता है, सब कुछ, और हड्डियों का ढांचा रह जाता है। इसीलिए आप देखें बाज पुरानी कब्रों को जब खोला जाता है तो उनके अंदर ढांचा भी नहीं पड़ा होता, हड्डियां भी घुलना शुरू हो जाती हैं, और क्या रह जाता है, बस आखिर में तो कुछ भी नहीं रहता, और सिर्फ इंसान की ये जो रीढ़ की हड्डी है, इसका जो एंड है वो रह जाता है, दैट्स इट। हड्डियां भी एक वक्त में आके घुल जाती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान के जिस्म में एक हड्डी है सिर्फ जिसको मट्टी कभी नहीं खा सकेगी। साहब ने पूछा या रसूल्ला वो कौन सी हड्डी है, फरमाया ये जो दुम की हड्डी का सिरा है, अजब ये है। और आज देखिए उस वक्त तो नहीं पता था, आज इंसान ने ये डिस्कवर किया कि इसमें इंसान का डीएनए होता है, इससे दोबारा वो पैदा हो सकता, समझ ले बीज इंसान का, यही समझ लें कि वो जो बीज है ना वो नहीं खत्म होता, वो मट्टी में रुल जाएगा, खत्म नहीं होता वो। हड्डियां भी अब जिनको हजारों साल मरे हुए हो गए उनकी तो हड्डियां भी चूरा चूरा हो गए, मट्टी हो गई, वो तो सबसे पहले ही खत्म हो जाता है, हड्डियां भी ओवर द टाइम वो भी खत्म हो जाती हैं, लेकिन ये बीज खत्म नहीं होता जिससे इंसान उगेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया हमें तो ये भी पता है कि जब लोग या अल्लाह जमीन के अंदर दफन करके चले गए, और इसके अंदर ये जो टूट फूट शुरू हुई है ना, कैसे एक एक चीज झड़ना शुरू होगी, कैसे एक एक जिस्म का जर्रा, कौन सा इस वक्त जिस्म का हिस्सा है जो मट्टी बन रहा है, कहाँ से वो खुल रहा है, फट रहा है उसका जिस्म, अल्लाह ताला जमीन के नीचे भी उसको जानता है, उसकी नजरें वहां पे भी हैं, हमारी नजरें नहीं देख सकती, हम नहीं जान सकते, हमें नहीं पता होता, हम घर जाके बैठ जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसके साथ क्या गुजर रही है वो अल्लाह ताला जानता है, हम जानते हैं जो उसमें कमी हो रही होती है, जमीन खा रही होती है। हाँ सिर्फ अंबिया को, उनके लिए अल्लाह ताला ने इस जमीन को हराम कर दिया कि उनके जिस्म खाए, उनके जिस्म वैसे के वैसे रहते हैं चाहे हजारों साल भी गुजर गए, नबी सल्लम ने फरमाया अंबिया के लिए अल्लाह ताला ने हराम कर दी। इसी तरह बाज अल्लाह ताला के कोई ऐसे नेक बंदे होते हैं, सहाबा की बाज की कब्रें खोदी गई वैसे के वैसे थे जैसे कि अभी अभी दफनाया, जैसे कि अभी बाल तक उनके वैसे के वैसे, सुभान अल्लाह, जैसे सोए पड़े हैं। तो कोई अल्लाह के बंदे होते हैं, क्या राज है इसके वो हम नहीं जानते, क्या है इसके पीछे, क्या चीजें हैं, क्या उनके अमल थे वो हमें नहीं पता, मगर हाँ ये पता है कि ये इनको मट्टी ने नहीं खाया, मगर बाकी सब इंसानों को मट्टी खा जाती है। तो अल्लाह ताला जानता है किसके जिस्म का कौन सा जर्रा किस वक्त डिकम्पोज हो रहा है, मट्टी बन रहा है। अल्लाह अकबर, एक एक जर्रे को जानता है, एक एक जर्रा जो बन रहा है मट्टी। फिर वो मट्टी के जर्रात किधर चले गए, कोई हवाएं उड़ा के ले गई, या कोई सैलाब आया तो उसके साथ बह गए, या किसी ने वहां से मट्टी उठाई और उसकी दीवार में वो लग गया उसका हिस्सा। अल्लाह अकबर। उस आदमी का किस्सा आपको पता होगा हदीस में, जिसके बारे में आता है कि उसने कोई नेकी नहीं की हुई थी, जब मरने लगा तो अपने बेटों से कहने लगा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे साथ एक काम करना, मेरे जिस्म को मेरी लाश को जला के और उसको कुछ बहा देना समंदर में, कुछ उड़ा देना, कुछ कहाँ रख देना, इस तरह मतलब बखेर देना हर जगह। अल्लाह अकबर। तो उन्होंने ऐसा ही किया। अल्लाह ताला का एक कुन कहना था, वो जहां जहां उसके जर्रे थे सब मिल गए और वो अल्लाह ताला के आगे खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया, तूने ऐसा क्यों किया, ये क्यों कहा कि मुझे ऐसे जला के और मेरी राख बहा दी जाए और कहाँ कहाँ मुझे मेरे जर्रे बखेर दिए जाए। कहने लगा, अल्लाह ताला तेरे खौफ से, बस तुझसे डर के, तेरे जवाबदेही के डर से, तेरे आगे खड़े होने के डर से। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मेरे से डर गया मैंने उसको माफ कर दी, उसको अल्लाह ताला ने माफ फरमा दी। उसके अंदर कितना डर था, वो ये अल्लाह ताला जानता है ना, उसने सोचा कि मैं बहा देंगे, या देखे ना समुंदर इतना बड़ा, कहाँ कहाँ जर्रे फैल गए, हवाओं में किधर किधर चले गए, किसके जर्रे। अब जो 10,000 पहले साल फौत हुआ था, अब बताएं उसके कहाँ जर्रे होंगे, जो लाख साल पहले फौत हुआ था उसके कहाँ जर्रे होंगे, ये अल्लाह ताला जानता है। और सिर्फ जानता नहीं है, वाइंदना किताबुन हफीज, और हमारे पास एक किताब है जिसमें वो चीज महफूज है। अल्लाह अकबर, की वो किताब है जिसमें हर चीज डॉक्यूमेंटेड है, रिकॉर्ड है उसका, लिखी भी है वो बातें, सब बातें लिखी हुई, इवन उसके जर्रे कहाँ कहाँ हैं वो भी उस किताब के अंदर है, किसको किसका जर्रा किधर पड़ा हुआ है वो भी उस किताब में डॉक्यूमेंटेड है, पहले से है। और सोचें किसने जीना, किसने मरना, किसकी शादी कहाँ होनी, किसकी औलाद कौन होगी, वो सब उसमें लिखा हुआ है। और बाज दफा बाज लोग बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, कहते हैं हमारी कोई अहमियत ही नहीं, कोई हमें अहमियत नहीं देता, मैं कोई भी चीज नहीं, मुझे कोई पूछता नहीं। सुबहान अल्लाह, मेरा और आपका नाम भी उस किताब में लिखा हुआ है जो महफूज है, उस तक किसी की दस्तरस नहीं है, कोई वहां तक पहुंच नहीं सकता, ना कोई इंसान, ना कोई जिन, ना कोई शैतान, कोई भी नहीं। अल्लाह हु अकबर, वो क्या महफूज किताब है। दुनिया की किताबें, दुनिया के रिकॉर्ड्स जल जाते हैं, चोरी हो जाते हैं, लोग हैक कर लेते हैं, या फाइल्स को करप्ट कर लेते हैं, या क्या क्या उसके अंदर करते हैं कि यानी उसको करना, चोरी करना कोई मुश्किल नहीं अब रह गया, या जाली बना लेते हैं, लेकिन वो किताब बिल्कुल महफूज है जिसमें मेरा भी सब कुछ लिखा हुआ और आपका भी। तो कितनी बड़ी अहमियत अल्लाह ताला ने दे दी, किताबे महफूज में लिखा, तो फिर क्यों डिप्रेस होते, कोई अहमियत दे ना दे, आपके रब ने आपको अहमियत दी है। तो यानी वो तो मर गए, खप गए, दुनिया भूल जाती है, आज तक याद रखा जब मर गए थे, कल याद रखा रोते रहे, परसों याद रखा थोड़ा रोना कम हो गया, उसके बाद तो फिर यादें भी नहीं आने लगी किसी की, कभी कभी याद आते थे, कभी ईद पे कभी कोई चीज देख ली तो तब याद आने लगे, और उसके बाद याद करने वाले भी मर खप गए, अब तो याद करने वाला भी कोई नहीं रहा, लेकिन अल्लाह ताला के पास उस रिकॉर्ड में उनकी यादें महफूज हैं। वो चले गए तो ये मतलब नहीं कि मिट गए, मिटे नहीं है, कहीं लिखा हुआ। अब हमें हमारे पढ़ पढ़ दादा वगैरह उनका तो नाम तक भी नहीं पता, कौन थे, कहाँ रहते थे, किधर से आए थे, उनके क्या मसाइल थे, क्या हालात थे, तो क्या हम सोचते मिट गए? मिटे नहीं, हाँ हमारी यादों से मिट गए, दुनिया में नामो निशान उनके मिट गए, लेकिन किताबे महफूज में तो सब लिखा हुआ है, कौन आया कौन गया। वो जो सबसे छोटा सिपाही था किसी फौज का, जो एक बिल्कुल गुलाम था कहीं, या कोई एक बस बिल्कुल अदना सा एक मुलाजिम था, या एक वो कोई बहुत फकीर नहीं थी जिसकी कोई अहमियत नहीं थी लोगों की नजरों में, या किसी की नौकरानी थी जिसको कुछ भी नहीं लोग समझते थे। हम तो सोचते ना वही जो इनके बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीर, इनके तो हालात जिंदगी कहीं किताबों में भी कोई लिखे हुए नजर आ जाएंगे, शायद कोई कोई बात उनकी पता चल जाएगी, या उनका नाम ही समझ में आ जाएगा। बाकी तो कितने ही सारे आए और चले गए, तो शायद वो खत्म ही हो गए। हाँ दुनिया में खत्म हुए, वहां नहीं हुए, किताबे महफूज में सब लिखा हुआ है, किसका आना, किसका जाना, किसका वक्त, किसका उठना, किसका बैठना, किसकी फतुहात, किसकी जीत, किसकी हार, सब लिखी हुई, हर हर चीज। और वो अल्लाह ताला का इल्म है, वो अल्लाह ताला का इल्म है, वो कुल्ल शैइन अहसैनाहू फी इमामिन मुबीन, सूरह यासीन में है ना, हर चीज तो गिन गिन के रखी हुई है उसी इमामे मुबीन। और वो ये किताब को ही कहा गया, इसी को उम्मुल किताब कहा गया, बल हुआ कुरान मजीद फी लौहे महफूज, ये कुरान भी उसमें लिखा हुआ है, उसी को लौहे महफूज कहते हैं, इसी उसी को किताबुल हफीज कहा गया। वतूर व किताब मस्तूर, वे भी इसी किताब की कसम है, सुभान अल्लाह। तो असल कुरान तो वहां पे है, ये तो हमारे पास कॉपीज हैं। अल्लाह अकबर, क्या किताब होगी वो, क्या क्या उसके अंदर राज होंगे, ये अल्लाह ताला का इल्म है। और देखें अल्लाह ताला का तो इल्म भी कामिल है, लेकिन उसने साथ डॉक्यूमेंट भी किया हुआ है, लिखवाया भी हुआ है, ताकि बात हमें समझ आ जाए कि ये सॉलिड बात है, सॉलिड बात है, ठोस है ये बात। अल्लाह अकबर, तो जो मर्जी बन जाओ, चाहे मट्टी बन जाओ, चाहे राख बन जाओ, चाहे कुछ भी बन जाओ, लेकिन सबके जर्रे जर्रे को वो जानता है। हम एक्सपोज्ड हैं, एक्सपोज होने से हम बहुत डरते हैं ना, आए मेरी ये बातें एक्सपोज ना हो जाए, आए मुझे मैं किसी के शख्स को पता ना चल जाए। एक्सपोज तो हम अल्लाह ताला के सामने हुए हैं, क्योंकि हमारी हर बात किताबे महफूज में है, किताब मकनून भी उसको कहा गया। बल कज़्ज़बू बिल हक़ लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज, बल्कि उन्होंने झुटलाया हक को जब उनके पास जा आ गया वो, बल्कि वो तो एक एक ऐसे इस मामले में एक इस्तराब की कैफियत में है, बेचैनी में है। महाराज अल बहरीन, मैंने आपको बताया ना, उसे मिले जुले समंदर, यानी वो ऐसी स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि उनको चैन नहीं है, बस कंफ्यूजन है, पता नहीं ठीक बात है कि नहीं। अब देखिए दिल तो कह रहा है ये सादिक और अमीन है, दिल तो कह रहा है कि ये तो कभी झूठ नहीं बोलते, अब उन इनकार भी करना है। जब इंसान हक को देख लेता है ना और वो इनकार करता है, तो उसके अंदर एक बेचैनी, एक कश्मकश शुरू हो जाती है। उनको तो समझ ही नहीं आ रही थी, अब हम कहें तो कहें क्या, जादूगर कहें, शायर कहें, मजनून कहें, काहिन कहें, अंदर गवाही दे रहा है कि नहीं ऐसी तो कोई भी बात नहीं। खालिद बिन वलीद का बाप था वलीद, तो उसने कहा कि काफरों से कि जो तुम लोग ये बात कह रहे हो ना, ये बात सही नहीं है, ये तो हमें पता चल रहा है ना, मजनून ऐसे होते हैं, ना शायर ऐसे होते हैं, या ना काहिन ऐसे होते हैं, तो अब क्या करें, इनकार फिर भी करना अपनी जिद की वजह से, तो बेचैनी तो अंदर होगी ना, किसी कल चैन तो नहीं आएगा। तो इंसान को जब हक बात सामने आ जाए ना, तो उसको कबूल कर लेना चाहिए, वरना अंदर कश्मकश शुरू हो जाती है। और देखिए जो ईमान है ना, ईमान जब इंसान ले आता है तो ये कश्मकश दूर हो जाती है, फिर इंसान के अंदर चैन आ जाता है। वो कहता है मैं हक पे हूं, सुकून होता है, चाहे दुनिया मुखालफत कर रही हो उसको, ये होता है नहीं मैं सही हूं और ये सही बात है। लेकिन शक हमेशा, ये कंफ्यूजन, ये पता नहीं ये सही कि नहीं सही, पता नहीं ठीक है नहीं है, ये हमेशा इंसान को ना मुस्तरिब रखती, बेचैन रखते, उसके अंदर एंग्जाइटी रहती है। अकल कह रही है सच है, अब मानू तो मानू कैसे। इसी वजह से पहली दफा ही जब बात सामने आए तो मान लेना चाहिए, अगर उस वक्त नहीं भी मान रहे ना तो इनकार ना करें, थोड़ा टाइम ले लें बेशक कि भाई मैं थोड़ा मुझे टाइम दे, लेकिन इनकार ना करें, क्योंकि जितना इनकार करेंगे ना उतनी अंदर से बेचैनी रहेगी। तो ये किस मसले में थे, अब उनको ये इनकार ऊपर से करना भी था लेकिन अंदर अंदर से बेचैनी इसकी वजह से थी, क्योंकि जाहिर है बात तो समझ आ रही कि बात सही कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने अब दलाइल दी है, ये जो तुम बातों पे बड़े हैरान परेशान हो रहे हैं, ये कैसे होगा, कैसे उठाएंगे, मैंने जैसे आपको बताया इसका थीम जो है ना वो अकीदा आखरत है, और स्टोरी यहाँ से बिल्ड हो रही है। आप देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें पूरा इसका क्लाइमेक्स है, ये जो अकीदा आखरत वहां पे ले जा के खड़ा कर दिया गया कि आप देखो। लेकिन उससे पहले दलाइल दिए कहें कि आप अब आपको देखें कयामत का दिन ले जाके तो नहीं दिखाया जा सकता ना, कि ले चलो भी आओ आपको दिखा के लेकर आए, और ये गैब की बातें हैं। ठीक है, गैब पे ईमान लाना, बिन देखे ईमान लेकर आना है, ऐसे नहीं कि मुझे दिखा दो, अगर दिखा दिया तो फिर क्या ईमान आपका हुआ। वो तो फिरौन भी उस दिन मान जाएगा, वो जो कहता था मैं रब हूं ना, वो भी मान जाएगा उस दिन, उस दिन तो बड़े बड़े जो मुतकब्बिरीन थे वो भी मान जाएंगे, नमरूद भी मान जाएगा। तो देख के मानना कोई मानना नहीं है, बात यह है कि आज आप इस कायनात को देखो, आज इन दलाइल को देखो जो इस कायनात में बिखरे हुए, और फिर अल्लाह ताला को पहचानो इनके जरिए। तो दलाइल दिए जा रहे हैं, और दलाइल इस बात के यहां पर दिए जा रहे हैं कि इससे पहचानो कि वो रब कितना कुदरत वाला है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं कयामत लाना, उसने कुन कहना कयामत आ जानी, उसके लिए कोई भी ये मुश्किल बात नहीं। ये हम सोचते हैं ये कैसे होगा क्या होगा कैसे, इस तरह पता नहीं किसको तो शेर ने खा लिया, कि कोई तो मर गया जी, वो तो उनको जला देते हैं, वो तो कब्रें भी नहीं है उनकी, और कोई तो जी वो पानी में डूब गया, और वो टाइटैनिक वाले तो डूब के वहीं उनकी कब्रें भी वहीं बन गई, और पता नहीं कितने लोग समुद्रों में डूब के गर्क हो गए, उनकी आज तक लाशें भी नहीं मिली, उनको कैसे अल्लाह ताला लेकर आएगा। तो ये तो हमारी दिमाग की बात है ना, हमारी अकल छोटी, हम छोटे, अल्लाह ताला की कुदरत इतनी बुलंद है तुम देखते नहीं हो, क्या चीज इला समा, आसमान की तरफ देखो, फौका का हम जो उनके ऊपर है। भाई आपको आसमान देखने के लिए पुराने जमाने में जाने की जरूरत नहीं, कि जिस वक्त कुरान उतर रहा था उस वक्त जाके हम आसमान को देख के 1400 साल, क्या 14,000 साल भी गुजर जाए तो ये आसमान उसी तरह है जिस दिन से अल्लाह ताला ने पैदा किया, आप आज भी देख सकते हो, ये उस वक्त भी देख सकते थे वो लोग भी, हर जमाने के लोगों को ये दावत दी गई, देखो तो सही, आंखें तो खोलो, आसमान की तरफ देखो जो तुम्हारे ऊपर, कोई पैसे लगते हैं देखने में, नहीं लगते। तो हमने देखा तो हुआ है, और क्या देखे, सब देख रहे हैं, काफिर भी देख रहा है, मोमिन भी देख रहा है, फकीर भी देख रहा है, अमीर भी देख रहा है, वजीर भी देख रहा है, मुशीर भी देख रहा है, सब देख रहे हैं, हमने देखा हुआ है। मैं अभी नजर उठाऊंगा आसमान नजर आ जाएगा, यहाँ पे क्या कौन सा देखना है, आंखों से, इन आंखों से सिर्फ नहीं देखना, दिल की आंखों से देखो, गौर के साथ देखो, गौर फिक्र की नजर से देखो, कैफा बनाइनाहा, किस तरह हमने इसको बनाया, सोचते नहीं हो कैसे बनाया इसको, देखिए आप इसकी वसतें देखते हैं, हद्दे निगाह तक आसमान है, उसका किनारा नजर नहीं आता, कितना खूबसूरत है, इसका रंग देख लो, इसकी वुसत देख लो, इसकी साख्त देख लो, विदाउट पिलर्स खड़ा हुआ देख लो, कौन सी छत विदाउट पिलर्स खड़ी होती है, कोई इसमें बीम नहीं नजर आ रही, कोई इसके अंदर सतून नहीं नजर आ रहा, कोई इसके अंदर सुराख नहीं नजर आ रहा कि झांक के हम ऊपर तो जरा देखें आगे क्या है, कोई शगाफ नहीं नजर आ रहा। वलकद ज़य्यना समा दुनिया भी मसाबीहा, और इसको अल्लाह ताला ने सितारों से मुज़य्यन भी कर दिया, देखते हो कितना खूबसूरत है, कितना अजीम शान है, और खड़ा हुआ है रोजाना ही आसमान होता है, यही आसमान है ना, फिर तो क्या इसकी कोई रिपेयर हो रही है, हम थोड़ा घर पुराना हो जाए तो रंग रोगन करना पड़ता है, हमें पेंट कराना पड़ता है, पेंट चढ़ना शुरू होता है, मैला हो जाता है। अभी देखिए हमने तो इसके कोई पेंटर नहीं देखा कि कोई आके पेंट करे, कभी रंग में आगे बादल आ जाते तो हमें बादलों के साथ नजर आता है, कभी साफ शफाफ देखे, पोल्यूशन इंसानों ने इतनी कर दी कि अब तो आसमान भी देखना जो है ना हर जगह सही से नजर ही नहीं आता, पोल्यूशन के बादलों के अंदर रह रहे हैं इंसान। लेकिन जहां पे देहातों की तरफ से जहां पे पोल्यूशन नहीं है, या ऐसी जगहों पे जहां पे बहुत कम पोल्यूशन हो, वहां पे आसमान को जरा गौर से तो देखो, इसका रंग देखो, और रात देखो इस आसमान पे कैसी खूबसूरत है, कैसा हमने इसको बनाया, छोटो सोचो तो सही, सोचते नहीं, और फिर इतना वसी, इतना बड़ा, छोटा सा नहीं है, तो सर उठा के तो देखो, इसके पैसे तो नहीं लगते, पेमेंट तो नहीं करनी पड़ती, एक गरीब से गरीब बंदा भी सर उठा के देख सकता है, किसी ने तो प्लानिंग की होगी इसकी, किसी ने तो इसको इतनी परफेक्शन से बनाया होगा, वो कौन है, ऐसा फ्लॉलेस बनाया वो कौन है, ज़य्यना और जीनत भी इसको दी, जैसे मैंने आपको बताया कि सितारों से जीनत दे दी, तो फिर तुम बताओ, अंतुम अशद्दु खल्कन अम समा बनाहा, तुम्हें पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान को, हमने बनाया। शायर कहता ना, खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, देखो तो सही इस निगाहे इबरत से देखो, और फरमाया मालहा मिन फुरूज, देखो इसमें कोई रखना नहीं, कोई दरार नहीं, कोई सुराख नहीं, कोई पैचिंग नहीं हुई भी, कोई देखिए आपका कपड़ा भी है ना कुछ अरसे में वो सीधा हो जाता है, फटने लगता है, तो इसमें कोई शगाफ क्यों नहीं, और ऐसा नहीं ये फट सकता नहीं है, फट सकता है इसलिए कि कयामत के दिन फटेगा ना, जब ऐसे जैसे पुराना वो सीधा कपड़ा फटने लगता है ना उस तरह, अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफा खुलिकत व इलस समाई कैफा रुफियत, कैसे इसको बुलंद किया देखते नहीं हो, बार बार अल्लाह ताला गौर व फिक्र के साथ देखने की दावत देता है, वैसे तो हम देखते ही रहते हैं, गौर व फिक्र से देखो, अल्लाह अकबर, और पहचानो उस रब को, वो कितना बड़ा होगा जिसने इतना बड़ा आसमान बना दिया, और अब तो हमारे पास इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन है किस तरह से ये बना है, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन है कि हम जाएं ऊपर और फिर हमें पता चले कि यहाँ पे क्या क्या है, कितने सितारे, कितने सैयारे, कैसा है सूरज जिससे मुजयन किया गया है, कैसे है सितारे, कैसा है चांद, चांद से भी मुजयन किया गया, रातों को तारे हैं, दिन को सूरज इसको खूबसूरत बना रहा है, कैसे उसकी किरणें फैल रही हैं, और कितनी वुसत है इसमें, आसमान तो ये नहीं कि ये कोई आपके ऊपर ही सिर्फ खड़ा हुआ है, आसमान तो ऊपर तक ये सारे आसमान ही हैं, और ये आसमान है दुनिया जिसपे हमारा यूनिवर्स है ना, जो जिसको हम कायनात कहते हैं, ये सिर्फ आसमान है दुनिया के नीचे है, अभी ऊपर वाले आसमान तो हमें पता ही नहीं। अल्लाह अकबर, वल अर्द मददनाहा, और जमीन को देखो बिछाया हमने, वह अलकैना, और डाले हमने फिया, इसमें रवासी या पहाड़, यानी पहले जमीन को बिछा दिया, देखिए कभी हमने सोचा है अल्लाह अकबर कि ये जो हमारा उठना बैठना सोना जागना, हमारे काम कारोबार, हमारी खेतियां, हमारे फल फ्रूट, सब जो बागात, जो भी हम यानी जो भी हम कर रहे हैं ना, जो या सारे इंसान जो भी कर रहे हैं, वो सिर्फ इस वजह से मुमकिन है कि ये जमीन स्टेबल है। अगर ये जमीन स्टेबल ना हो तो हमारा कोई काम भी नहीं हो सकता। हम सुकून से एक लम्हा भी गुजार नहीं सकेंगे। आप देख ले, जलजला, अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह रहम करे, जब आता है तो चंद सेकंड के लिए आता है हमेशा। बहुत क्या हो तो 1 मिनट के लिए आ गया, उसमें कितनी तबाही होती है। और जमीन हिलती रहती तो क्या होता, हम तो उठ ही नहीं सकते थे, खड़े ही नहीं हो सकते थे, कि बस किसी जगह आपको पकड़ के बैठे ही रहते। कभी आपने अल्लाह ताला की इस नेमत के ऊपर गौर किया? कभी अल्लाह ताला ने आपकी, अल्लाह ताला की इस एहसान को आपने जाना? देखो जमीन को कैसे बिछा दिया, बिछाया हुआ तुम्हारे लिए, ऐसा इसको वसी बना दिया, सारे इसमें समा गए, इसी में जीते और इसी के अंदर मर के चले जाते, इसी में से हमारा रिस्क निकलता है, इसी पे हम शादी ब्याह करते हैं, इसी से आगे हम फैल रहे हैं, हमारी नस्लें फैल रही है, इसी में है ना। इसने हमें अपने अंदर जगह दी भी है, इसी में हमारे लिए इंतजाम है, ऑक्सीजन का, पानी का और खाने पीने का, हमारी सस्टेनेंस अल्लाह ताला ने इसमें ही रख दी। अब इसमें अगर ग्रेविटी ना होती तो हम उछलते फिरते तो हम कैसे कोई काम कर सकते थे? ये लोहे की तरह होती तो हम कैसे इसके अंदर खेतियां उगाते? आटे की तरह नरम हो जाती, गुंदे हुए आटे की तरह, तो हम कैसे चलते फिरते? पैर ही अंदर चले जाते। फिर पहाड़ इनमें ना होते तो ये कैसे स्टेबल होती? कीलों की तरह, मेखों की तरह इसमें पहाड़ों को गाड़ दिया गया। फिर एक तरफ को ढलकी भी नहीं कि जैसे पहाड़ होता है, एक तरफ से ऊंचा एक तरफ से नीचा, तो ऐसे नहीं है कि ऐसे हम फिसलते ही जा रहे हैं, इसके ऊपर स्लिप हो रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट इसको कर दिया, मदद ना हा। ऐसे नहीं है कि स्लांटिंग है, ये स्लोप सी बनी हुई है, स्लोपों के ऊपर हम कैसे रहते? अल्लाह हु अकबर, कभी इस तरफ हमारी निगाह ही नहीं गई। फिर सिर्फ इतना ही नहीं, वह अम्बत ना फिया मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, फिर हमने इसके अंदर उगाए हर किस्म के जोड़े बारौनक। बहीज क्या है? बहीज हसीन भी है, खुश करने वाली चीज को भी कहते हैं, खुशनुमा। तो तरोताजा भी, यानी जौजिन नर और मादा के ने जोड़े बना बना के इसको, आपको पता है प्लांट्स में भी जोड़े हैं ना, ये तो अब इन्होंने साइंस ने बताया, देखो कुरान कब बता रहा है, तो उनमें भी जोड़े हैं जिससे आगे फिर वो बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, तो किस किस तरह के तुम्हारे लिए जमीन से पैदावार कर दी, मुख्तलिफ रंगों की, मुख्तलिफ शेप्स की, मुख्तलिफ जायकों की। तबसीरतन व ज़िक्रा लिकुल्ली अब्दिन मुनीब, तबसीरतन तबसरा, हम कहते हैं ना तबसरा करना, यानी देखने के लिए, बसीरत के लिए, सबक लेने के लिए, सबक हासिल करने के लिए ये रखा है, और जिक्र और नसीहत, याद दहानी के लिए, रिमाइंडर के लिए। लेकिन किसके लिए? रिमाइंडर भी हर कोई नहीं लेगा, इससे याद हर एक को नहीं याद आ जाएगा, रब याद नहीं आएगा हर एक को, और बसीरत भी हर एक को नहीं मिलेगी, यानी गौर करना, बसर है ना देखना, तो गौर की नजर से अपने जो जैसे दिल की आंख जिसको कहेंगे, उससे देखना। ये भी नहीं हर कोई देखेगा, वरना तो दुनिया में सारे लोग फिर रहे हैं, सब देख रहे हैं कि जमीन भी फैली हुई, आसमान खड़ा हुआ, जी क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, और उग रही हैं चीजें तो कौन सी बड़ी बात है? ये बड़ी बात पता है किसको लगेगी? जो अब्दे मुनीब है, वो अल्लाह का बंदा जो मुनीब है, यानी मुनीब का मतलब रुजू करने वाला, जो अल्लाह ताला की तरफ लौटने वाला, अल्लाह की दाद की तरफ आने वाला, जो मुखलिस बंदा है, ये भी माना है इसका। तो मुनीब ही है सिर्फ जो वाकई फायदा उठाएगा इस फैले हुए आसमान को देख के, इस जमीन को बिछा हुआ देख के, और इसमें से जो चीजें निकल रही हैं उनसे वाकई सबक, नसीहत और गौर की नजर वो ही रखता है जो अब्दे मुनीब है। तो यानी ऐसे बंदे के लिए फायदा मंद है, ऐसे बंदे के लिए तो ये टीचर है जो उसको कुछ सिखा रही है। ऐसा बंदा इनसे रब को पा लेता है, ऐसा बंदा समझ जाता है कि अल्लाह ताला तेरी कुदरत कितनी है, वो अल्लाह ताला को पहचान जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला को हम देख नहीं सकते मगर उसकी मखलूक से उसको पहचान जरूर सकते। जब आप देखिए एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं, तारों सितारों का, सूरज का, कायनात का, इतनी इतनी और सिस्टम्स हैं। ये हमारा एक सोलर सिस्टम को देखते हैं, निजामे शमसी हमारा देखते हैं, इसके अलावा कितने हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं। और हमारी एक गैलेक्सी मिल्की वे है, उसमें बिलियंस बिलियन सितारे हैं, फिर और भी इसके अलावा हैं। कैसे ये निजाम चल रहे हैं, टकराते क्यों नहीं, यहाँ पे तबाहियां क्यों नहीं हो रही, यहाँ पे एक दूसरे के साथ कोई बैर क्यों नहीं किसी ने लिया हुआ, जंगे क्यों नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। कितना सुकून है, ऊपर कोई चलाने वाला है कि नहीं, या खुद ही चलते जा रहे हैं। उनकी स्पीड भी किसी ने नहीं बनाई हुई, उनके साइज भी किसी ने नहीं बनाए हुए, उनके पाथ भी किसी ने नहीं डिटरमिन किए हुए कि किसने किस पाथ में चलना है, उनके ऑर्बिट भी किसी ने नहीं बनाए हुए। खुद ही ऑर्बिट भी बन गए, खुद ही स्पीड भी बन गई, खुद ब खुद ही वो इसके अंदर ही चलते जा रहे, चलते जा रहे। एक दिन चलो, 2 दिन चलो, चल पड़े, उसके बाद तो टकरा जाते नहीं, हजारों लाखों साल है ना टकराते हैं ना कुछ हो रहा है। इनको अक्ल ही नहीं मानती कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, बगैर किसी बनाने वाले के, बगैर किसी चलाने वाले के, बगैर किसी ऐसी जात के जिसका कंट्रोल हो, इसके बगैर। खुद सोचे ना, आपकी गाड़ियां हालांकि लेन्स बनाई हुई है, हालांकि कवानीन रखे हुए हैं, हालांकि स्पीड लिमिट बताई भी है, हालांकि अक्ल शऊर रखने वाला इंसान स्टेयरिंग के पीछे बैठा होता है, फिर भी टकराती हैं। रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज नुकसानात होते हैं। लेकिन क्या बात है कि आप ये कह रहे हैं कि ये मैसिव बॉडीज, छोटी छोटी गाड़ियां नहीं है, मैसिव बॉडीज हैं, इतनी बड़ी, इतनी ह्यूज, ये तो जमीन हमारे पूरे सूरज के सामने ऐसे है जैसे छोटी सी बॉल, छोटी सी, जो आपकी छोट ये शहादत की उंगली और इसके दरमियान, अंगूठे के दरमियान आ जाए, इतने सा बॉल है, उससे कितने बड़े बड़े वो सारे जो हैं। अब हम क्या कहते हैं कि इनके अंदर अक्ल है, हम तो नहीं मानते ना, ये तो ऐसे, हम तो सोचते हैं ये बेअकल सी चीजें हैं क्या, हम तो इनको कुछ लिविंग थिंग तो नहीं कहते, हम इनको अकल से आ रही चीजें हैं, पत्थर हैं या मतलब मैसिव बॉडीज है, वो आग का एक गोला है, उसको इतनी अकल है सूरज को कि किधर चलना है, उसका ऑर्बिट क्या है, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, ना तेज चलता है ना आहिस्ता चलता है, उसी स्पीड पर भी चलता जा रहा है और उस ऑर्बिट के अंदर ही बंधा हुआ है। हाँ जी चलो जी, हाँ जी फोर्सेस हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो फोर्स किसने बना दी, वो फोर्स कहाँ से आ गई, वो तो मैं खुद ही, वो अक्ल तो करो, समझ तो करो, फिर अल्लाह की जात को झुटलाने लगना। मैं आपको ये बात इसलिए इतना जोर दे के बता रही हूं, आप कहेंगे हम तो यकीन रखते ही हैं, हमें क्या बताना, आप तो यकीन रखते होंगे और अल्लाह ताला इस यकीन को सलामत रखे। लेकिन अब चूंकि हमारे इर्द गिर्द ही ऐसे लोग भी पैदा हो चुके हैं जो क्वेश्चन करने लगे अल्लाह की जात पे भी कि कोई खुदा है, एथीस्ट बन रहे हैं, वो खुदा है इसके पर क्या दलील है, ये तो सब कुछ खुद ही बन गई। खुदा के लिए इस इल्म को लें, ऐसे लोगों से भी मेरी मुलाकात हुई है जो पहले मुसलमान थे लेकिन उसके बाद किसी की बातों में आके और किसी और की बातों में आके और फिर आगे से आगे अब एथीस्ट हो गए, और वो इस एथीज्म को फैला रहे हैं, वहीं नहीं बैठे हुए, फैला रहे हैं आगे से आगे। तो हमें इसमें इतना फर्म होना चाहिए और हमें इसके अंदर सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हम मुसलमान पैदा हो गए थे तो लिहाजा हम मान रहे हैं इसलिए अल्लाह ताला की जात को, नहीं, अकल कहती है, समझ कहती है, ये कायनात कहती है कि एक खुदा है, ये जुबाने हाल से बोल रही है, इसको एक होती है जुबाने काली यानी मुंह से बोल के बताना, उससे तो नहीं ये बोल सकते लेकिन ये अपने हाल से बता रहे हैं हमें। पूरी कायनात बता रही है इसका बनाने वाला है, चलाने वाला है और चलाए रखने वाला भी है। एक दफा चलाना वो शायद कोई मुमकिन हो सकता, लेकिन किसी लम्हे ये चीजें उसकी नजर से ओझल नहीं है ये भी पता चल रहा है, क्योंकि किसी लम्हे वो गाफिल होता तो ये तो इतने बड़े बड़े जुस्से हैं, ये तो एक भी टकरा जाता तो कुछ भी बाकी ना रहता। हम तो क्या और हमारी हस्ती क्या, ये तो इंसान की जुबानी है जो इतनी लंबी हो जाती कि वो ऐसा गुस्ताख है कि अल्लाह ताला की जात को क्वेश्चन करने लगता है। और शर्म नहीं इसको आती कि साइंस ही पढ़ के देख लेते तो आपको पता चलता कहाँ कहाँ तक ये कायनात फैली हुई है। उसी से सोच लेते, अगर आज से हजारों साल पहले वाला इंसान क्वेश्चन करता तो समझ आती उसका तो इल्म लिमिटेड था, आज तो साइंस आपको कहाँ कहाँ तक बताती है, क्या क्या है, रोज डिस्कवरीज हो रही हैं, रोज नई से नई चीजें आ रही हैं। अब तो वो साइंटिस्ट जो मुसलमान भी नहीं है वो भी मानता है कि एक हस्ती जरूर है जो इसको चला रही है, और जो अपने आप को मुसलमान कहता था वो कहने लगा नहीं कुछ भी नहीं। तो तुम्हारी अपनी अकल बताएगी, किसी और जाने की जोर क्या जरूरत है, अगर अकल को इस्तेमाल करो हर चीज पीछे रख के। मत नहीं, ये तो ऐसे हो गया, फिर उसके बाद ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, कैसे कैसे हो सकता है, हर चीज परफेक्ट चलने लग गई। तुमसे तो गाड़ियां नहीं परफेक्ट चलती, दिमाग तो अपना हम अपना इतना समझते हैं कि हम इतने इंटेलिजेंट हैं, लेकिन फिर भी देखो रोजाना जिंदगियों में भी हादसा हो रहे हैं। अगले हमें नहीं पता ये क्या होने वाला है, इंसान बीमार पड़ जाता है, इंसान कहीं कारोबार करता है नुकसान हो जाता है, शादी करता है तो वो चलती नहीं है, लेकिन अपने आप को परफेक्ट समझता है कि मेरा इल्म बहुत ज्यादा है। ये तुम्हारा हाल है, उसको ये नहीं पता कि मैं अगला कदम उठाऊंगा तो पता नहीं वो कदम रख पाऊंगा भी या गिर जाऊंगा, कौन से वायरसेस मुझ पर अटैक कर रहे हैं, कौन सा वायरस नया आ गया है, उसका इलाज क्या, ये तक नहीं पता, और क्वेश्चन करता है अल्लाह ताला को। तो समझे इन चीजों को अच्छे तरीके से समझे, ये हमारे अपने लिए भी जरूरी है और दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी जरूरी है। जब अपना ईमान कमजोर होता है फिर इंसान ऐसे लोगों की बातों में आ जाता है, जब अपना नॉलेज नहीं होता और पता ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं इन चीजों के ऊपर, कभी कुरान पढ़ के ही नहीं देखा, तो फिर वो इंसान दूसरों की बातों में आ जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं देखो وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا, देखो आसमान से हमने नाजिल की, नज़लना है इंजाल नहीं है नज़ल है, अरे थोड़ी थोड़ी करके कंटिन्यूअसली अल्लाह ताला की तरफ से बारिश बरसती रहती है। माँ ऐसा पानी जो मुबारक है, जो मुबारक पानी से ही अम्बतना भी जन्नात, तो उसी से उगते हैं ना फिर बागात, जो मुबारक पानी नहीं होता जैसे हरिकेन आ जाता है, ऐसे 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 तूफान आते हैं कि तबाही मचा के रख लेते हैं, उखेड़ देते हैं छतों को और घरों को और क्या क्या नुकसानात करते हैं, वो नहीं बारिश, वो वाली जो बाबरकत बारिश है जो आती है, ऐसी वाली नहीं होती कि तूफानी हो, जिससे सब्जे भी उगते हैं, फल भी उगते हैं, वहबल हसीद के जो ऐसे अनाज हैं जो खेती के होते हैं, जो कटने वाली खेती, यानी अल्लाह ताला उस बारिश के जरिए दोनों तरह की चीजें उगाता है, एक तो वो है जो आप फल दरख्तों से तोड़ लेते हैं, और खेती डिफरेंट होती है, उसमें से आप तोड़ के वहीं खेती खड़ी नहीं रहती बल्कि उसको हार्वेस्ट करना पड़ता है, कट जाती है ना पूरी, फिर उसके बाद नए सिरे से एक बीज डाले जाते हैं फिर खेती उगती है, ऐसे ही होता है ना। आप देखे अनाज के गंदम है, मकई है, चावल है, इनके भी काट दी जाती, तो अल्लाह ताला इसी पानी से फल भी उगाता है और वो हब भी जो कि आप स्टोर करते हैं और ओवर द ईयर पूरा खा सकते हैं, सारा वक्त तो नहीं वो फसल आती रहती ना, वंस अ ईयर आती है, लेकिन उसकी अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये खासियत रख दी कि उसको स्टोर किया जा सकता है और वो स्टोर करके फिर सारा साल चलाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बारिश बरसाने वाला है जिससे ये सब कुछ उगता है, और जब दाना जमीन से उग सकता है तो तुम्हारा बीज जो जमीन के अंदर होगा, क्या अल्लाह ताला उसको नहीं उगा सकता? वो भी एक बारिश होगी जो जिसके बाद जमीन से जिस्म उगेंगे, जैसे पौधे उगते हैं, ऐसे हदीस में है, जमीन से जिस्म उगेंगे और फिर उनके अंदर रूह डाली जाएगी, फिर खड़े हो जाएंगे, देखना शुरू कर दें, क्या मुश्किल है। बीज से भी तो उगते हैं पौधे। और मान मुबारकन, इसका मतलब बारिश मुबारक पानी होती है, इसका पानी मुबारक होता है, बाबरकत होता है। और इसके बारे में हमें हदीस भी पता चलती है, अनस रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो हम पर बारिश बरसने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे का और सर का कपड़ा जो था ना वो खोल दिया, यानी सर से भी कपड़ा उतार दिया और कंधे से भी, और बारिश आपके जिस्म पे पड़ने लगी। हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह आपने ऐसा क्यों किया? आपने फरमाया, क्योंकि ये अपने रब अज्जा व जल की तरफ से आ रही है, यानी डायरेक्ट आ रही है अल्लाह ताला की तरफ से। तो इसको कुर्तुबी फरमाते हैं अपनी तफसीर में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बारिश से तबरुक लेना था और उससे शिफा हासिल करना था, क्योंकि अल्लाह ताला ने बारिश को बाबरकत पानी फरमाया है, करार दिया है। देखें यहाँ पे माँ अम मुबारक, ये बाबरकत पानी है, इसमें बड़ी बरकतें, इसमें बड़ी खैर है। तो आपके ऊपर भी अगर बारिश पड़े तो आप इसको बुरा ना जाने कि हाय बारिश का पानी, हाय मेरे ऊपर क्यों पड़ गया, या बारिश को ना बुरा जाने, हाय फिर बारिश, हाय फिर बारिश, ये क्या बात हुई। नहीं, इसके ऊपर एतराज ना किया करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने बारिश को माँ मुबारकन कहा है। अब से हम बारिश को बुरा भला कभी भी ना कहे, इसको अपने लिए मुबारक समझे। और अल्लाह ताला ने इसके जरिए वह नखला बासिकातिल्लाह तलउन्नदीद, तो और खजूर के दरख्त बुलंदो बाला, देखिए खजूर के दरख्त में ब्यूटी भी है और इसका फल भी बेहद फायदेमंद है, और इसका फल भी स्टोर करके आप इसको यूज कर सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होता, और इसकी हर चीज से फायदा उठाया जाता है, इसके पत्तों से, इसकी शाखों से, इसके दरख्त भी फायदेमंद है, इसकी खजूर जो है वो फायदेमंद है, आप इसको सुखा के भी यूज करते हैं, इसकी गुठली को भी यूज करते हैं, तो सुभान अल्लाह। और ये इतना, ये भी बाबरकत ही दरख्त है, क्योंकि इसके भी फवाइद इतने ज्यादा हैं खजूर के, प्लस इसकी एक एक टहनी से इतनी इतनी खजूरें, गुच्छे के गुच्छे उतरते हैं। तो खजूर का दरख्त जो बुलंदो बाला है, और देखिए ऐसा दरख्त है, इसे रजुले मोमिन को जो है ना, मोमिन आदमी को जो मिसाल दी गई, उसकी मिसाल खजूर के दरख्त से दी गई कि वो खजूर के दरख्त की तरह है, क्योंकि खजूर का दरख्त भी बड़ा फायदेमंद है, मोमिन भी जो है ना बड़ा फायदेमंद होता है, उसके लिए खजूर का दरख्त भी बड़ी खैर लाता है, मोमिन भी सबके लिए खैर वाला होता है, उसका शर नहीं होता, किसी को शर नहीं पहुंचता, वो सबके साथ अच्छा करता है। और खजूर के दरख्त की ना बहुत ज्यादा निगहदाश्त नहीं करने की जरूरत होती, ये टफ होता है, ऐसे नहीं कि बस जल्दी से जरा सी आंधी आई तो गिर गया, या जरा इसको पानी ना दिया तो बस खत्म हो गया, बाकी दरख्तों की तो बहुत बहुत खिदमत करनी पड़ती है, तो तब पल आते हैं, इसके इसका इतना नहीं करना पड़ता, तो ये लेता कम है और देता ज्यादा है, तो मोमिन भी ऐसा ही होता है। तो तलउन तुलू से, तो जो पहला शगुफा निकलता है, पहला खोशा निकलता है ना, तो उसको कहा गया, इसके अंदर से ऐसे खोशे हैं तह बतह है। वो देखे हमने कभी खजूर के वो देखा हो, उसकी टहनी के ऊपर किस तरह से वो एक के ऊपर एक एक के ऊपर जैसे पिरोए होते हैं, ऐसे फल लगा होता है। और असल में नजीद ऐसे है जैसे स्टैक करना ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ये मंजर देखने में भी बड़ा प्यारा लगता है, और ये दरख्त भी बड़ा खूबसूरत लगता है, इसलिए लोग अपने घरों में भी लगाते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं, ये इसकी ब्यूटी ही अलग होती है, और ऊंचा होता है, बुलंद होता है, कि मतलब है कि हर किस्म की कोई नुकसान से दूर, आउट ऑफ रीच होता है, कोई इसको नुकसान नहीं दे सकता।